आइए शुरू करते हैं सूरत को आयतों के साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम स्वाद हुरूफ मुक़त्तआत हैं और मक्की सूरतों की एक अलामत। हम पिछली सूरतों से पढ़ते आ रहे हैं किसके शुरू में हुरूफ मुक़त्तआत होते हैं। अरबों का एक असलूब था, बात का एक स्टाइल था। जैसे हर इलाके में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, वही इसमें भी दिखती हैं। और वैसे भी सुनने वालों को होशियार किया जाता है कि अब अपनी तवज्जो ज्यादा कर लो क्योंकि अल्लाह का कलाम तुम्हारे सामने आ चुका है। आप कह सकते हैं कि हरूफ मुक़त्तआत एक ऐसा राज है जो अल्लाह ने अपने नबी पर भी नहीं खोला। आज हम मुसलमानों में बास लोगों के घरों पर या घरों के अंदर कतबों की सूरत में लोहे कुरानी के नुस्खे लगे होते हैं। आप उससे क्या लेंगे? उससे तो बेहतर है आप कोई दुआ लिख के लगा लें और आते जाते नजर पड़े तो याद कर लें। तो अगर सिर्फ बरकत के लिए करते हैं तो बरकत तो ऐसे नहीं मिलती। याद करना है तो कोई आयत लगा लीजिए, और अगर सिर्फ एक डेकोरेशन पीस है जैसे आप कोई और इस्लामिक चीजें लगाते हैं तो ठीक है, फिर आपकी मर्जी है, कोई हरज की बात नहीं है। एक चीज नोट कीजिएगा कि कुरान पाक की दो सूरतें ऐसी हैं जिनके शुरू में चार चार हरूफ मुक़त्तआत आए, यानी चार आए हैं। ठीक है, एक तो ये अलिफ लाम मीम स्वाद, ठीक है, और दूसरी सूरत अर्रौद है जिसके शुरू में अलिफ लाम मीम रौ होता है। इससे पहले जितनी सूरतें अभी तक गुजरी हैं उनमें हरूफ मुक़त्तआत तीन थे, सूरत बकरा और सूरत आले इमरान में अलिफ लाम मीम। अगली आयत, किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सद्रिका हरजुम मिन्हु। ये एक ऐसी किताब है कि नबी जो हमने आपकी तरफ नाजिल की, तो आपके दिल में इससे कुछ तंगी नहीं होनी चाहिए। बल्कि क्या, लितुन्ज़िर बिही वज़िक्रा लिल्मुमिनीन। ये तो इसलिए है ताकि इसके जरिए से आप खबरदार कर दें और ये एक याद दहानी है अहले ईमान के लिए। अभी तذکرہ हुआ कि सूरत अल आराफ मक्की दौर के आखिर में नाजिल हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की बात पहुंचाते हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका था। अपने तो अपने, बेगाने तो बेगाने, हर एक तक आपने अपनी इस्तेदात के मुताबिक बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन लोग थे कि मान के नहीं देते थे। और जब कोई एक बंदा आपको झुठलाए आप थोड़ा सा फील करते हैं ऐसे ही इसने कह दिया, हो सकता है हसद की बुनियाद पे कह दिया। दूसरा कह दें आप कहते नहीं लगता ये इसने इसको भी बता दिया। लेकिन जब कोई बात कोई एक बंदा बार बार सुने किसी से अपने बारे में तो शक में पड़ जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, लेकिन रसूल होने के साथ साथ बशर भी थे, और बशरियत के अंदर कुछ ऐसी खूबियां होती हैं कि हालात का असर होता है उसमें। आपकी कोई तारीफ करे आप खुश होते हैं, चाहे आपको अच्छा ना भी लगे। कोई आपको बुरा कहे तो आपको बुरा लगता है, चाहे वो चीज बाद में आपके लिए फायदे की हो। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, नबी किताब उन्ज़िला इलैक, ये किताब आपकी तरफ नाजिल की गई है। यह लफ्ज उन्ज़िला को थोड़ा सा समझ लीजिए, ये मजहूल है, पैसिव वॉइस है इंग्लिश की सूरत में, यानी आपने ये किताब मांगी नहीं है, ये हमने आपको दी है। इसलिए आप अगर इस किताब के बारे में ये सोच रहे हैं ना कि ये लोग मुझसे लेते नहीं, मुझे इसका हक अदा करने में मुश्किल हो रही है, तो फिक्र ना करें, थोड़ा सा इसको समझिए। एक वो जिम्मेदारी है जो किसी को खुद दे दी जाती है, नहीं नहीं करें आप, वो कहते मैं नहीं कर सकता, आप कहते करें सही कोई बात नहीं, कुछ कमी बेशी होगी तो खैर है। ठीक है, अब ऐसे बंदे का भी मुहासबा होता है एंड पे, जिम्मेदारी तो नाम ही मुहासबे का ना। लेकिन एक वो जिम्मेदारी है जो कोई मांगता है, मुझे दे के देखे मैं क्या करता हूँ, मुझे दे। अब जब आप उसको दे देते हैं तो क्या बताइए, उसका मुहासबा पहले से सख्त होगा कि कम, ज्यादा होगा ना, ये आपने मांगी है। यहाँ नबी सल्लम को तसल्ली दी जा रही है, आपने मांगी नहीं है ये जिम्मेदारी। और हकीकत भी यही है कि अल्लाह के काम के करने की जिम्मेदारी अल्लाह खुद सौंप देता है। बंदा अगर ये कहे कि मेरे अंदर कोई खूबी आए, कोई वसफ आए, कोई मैं अच्छा बन जाऊं तो फिर ये काम करूं, तो ये दिन तो कभी भी नहीं आएगा। तो लिहाजा उन्ज़िला इलैका, हमने खुद दी है आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट वरी, डोंट फील सो गिल्टी। क्योंकि अल्लाह के नबी का हाल ये था कि वो नबूवत के कामों की वजह से इतने परेशान रहते थे कि बस दफा आप हरी सारी रात इबादत में मसरूफ रहते क्योंकि आपको जिम्मेदारी का एहसास था। अल्लाह ताला कहते हैं, फला यकुन फी सद्री का हरजु मिन्हु, बस आपके सीने में इससे कोई तंगी ना आए। सदर का लफ्ज तो हम पढ़ते हैं, सदूर जमा है, सीनों को कहते हैं, कि जो सदर पाकिस्तान है वो भी यही लफ्ज है, क्योंकि जो सदर होता है वो किसी भी मुल्क का एक बड़ा अहम हिस्सा होता है। तो दिल जिस्म के अंदर एक बड़ा अहम टुकड़ा है। सदर कह के यहां असल में कल्ब मुराद है, यानी आपका दिल, क्योंकि दिल सीने में होता है। और कुरान की ये खूबी है कि एक चीज बोलकर दूसरी चीज उससे मुराद ली जाती है। क्या ना हो हरजुन, लफ्ज हरज को देख लीजिए, उर्दू में हम बोलते हैं कोई हरज नहीं। हरज किसको कहते हैं? कांटे को कहते हैं। कांटो भरी गुजरगा, कभी आपने ऐसी कोई घाटी देखी होगी जिसके चारों तरफ कांटे हों? अब आप तसव्वुर में लाइए जरा, घनी झाड़ियां। क्या मतलब कि फला यकुन फी सदरी का हरजुन, तो हरजुन से मुराद अगर आप यहां कांटे लें, तो कांटों से मुराद क्या है कि जिस दौर में अल्लाह के नबी ने दीन का काम करना शुरू किया, हकीकत में दीन का काम कांटों पे चलना। हालात बड़े नासाजगार थे, मक्का वाले मुसलमान होने और कहने के बावजूद अमल और एतिकाद और रस्म रिवाज में बिल्कुल नॉन मुस्लिम से मिलने लग गए थे। तो वो हालात जो थे उसकी वजह से अल्लाह कहते तंगी ना आए। तो आप कह सकते कि दो वजूहत थी नबी सल्लम के दिल पर घुटन की। नंबर एक के वहां के हालात बड़े मुख्तलिफ थे, लोग असल पैगाम से बहुत दूर जा चुके थे, नबियों के लाए हुए मैसेज में बहुत तब्दीलियां हो गई। और एक दूसरी भी वजह है आपके दिल में तंगी आने की, और वो क्या है कि जो पैगाम दिया जा रहा था आपके जरिए वो उस वक्त के रिवाज से बहुत मुख्तलिफ था। आप कहेंगे समझाइए, बात समझ कोई नहीं आई। तो समझना है तो फिर आज की जुबान में ऐसे समझ ले कि कोई आपको आके कह दे कि बारात का तो इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है, तो लोग एकदम चौंकेंगे हैरत से, क्या क्या किसने कहा बारात? अच्छा शबे बारात? नहीं नहीं शादी नहीं बारात, अच्छा इस्लाम में इसको कोई तसव्वुर नहीं, लोग चौंकेंगे। आप कहते जी मरने के बाद 3 दिन तक सो गए, उसके बाद 10वां और 40वें का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं, तो लोग हैरान होंगे ना। ये मैसेज जब वक्त के हालात से मुख्तलिफ होता है तो जो बात करता है उस पर बड़ा प्रेशर होता है। कल अल्लाह के नबी के दौर में भी यही हालात थे, आज भी कमो बेश जब भी कोई हक की दावत लेके निकलता है यही परेशानी होती है। वक्त के साथ लोगों ने दीन के नाम पर इस किस्म की चीजें शामिल कर ली होती हैं अपनी रस्मों रिवाज में कि बाज दफा लोगों को फिर वो चीजें इस तरह अहम लगती हैं कि आज किसी बच्चे ने शायद निकाह होते हुए देखा हो, शायद ही आप में से किसी ने अपनी शादी के मौके पे मौलवी साहब के निकाह के लफ्ज सुने हो या बोले हो। हमें पता भी नहीं होता कब हो गया कहाँ हो गया, इल्ला ये कि हमने उसका भी एक अलग फंक्शन बना के एक और नया जोड़ा सिलाया हुआ है कि ये मैं निकाह वाले दिन पहनूंगी, अदरवाइज पता भी नहीं होता। लेकिन मेहंदी, ओपटन, चूड़ी, मेहंदी, रस्में, खाना पीना सबको पता होता है। तो लिहाजा ऐसे वक्त में ये नहीं कहा कि पैगाम को बदल दो, ये असल बात है मेरे और आपसे सीखने की। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या दीन उबदाऊ गरीबन, दीन अजनबियत से शुरू हुआ था, और एक वक्त आएगा सयाऊद का मा बदा, ये एक वक्त आएगा दोबारा उतना ही अजनबी हो जाएगा जैसे शुरू हुआ, जैसे आज का दिन है। तो आज इसमें दीन की बात कहने वालों को अल्लाह ताला की तरफ से एक तसल्ली दी जा रही है कि गम ना करो। कितना आसान था, अल्लाह के नबी कहते लोगों को खुश रखो, कोई बात नहीं थोड़ा सा पैगाम बदल दो, कह दो आज के दौर में जायज है, चलो पहले बच्चे की जायज है, चलो इस मुल्क में रहते हो तो ये जायज है, कह सकते थे ना। बस तसलियां दी आपके दिल में घुटन ना हो। इसी तरह देखिए हरज के लफ्ज में घुटन भी है, सीना घुटता है ना, जब लोग आपको गलत कहते हैं तो दिल घुटता है, घुटन ना हो। हरज का एक मानी शक भी होता है, 4 मानी बताए मैंने आपको, अब इसको बाद में जाके गिनिएगा। शक, ये बिल्कुल वही बात है, जालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तो कहा गया कि ये लोग झुटलाते हैं, लेकिन आपके दिल में इस किताब से कोई शक नहीं आ जाना चाहिए कि शायद ये दुरुस्त है कि नहीं। जैसे आज भी लोग हक की बात सुन के अक्सर लोगों से सोचते हैं, लगता है कि ये ज्यादा ही एक्सट्रीम पे चले गए हैं, ये कुछ और ही बना रहे हैं हमें, ये कोई एक्स्ट्रा ही दीन है, बाकी सारे ऐसे नहीं, वो नहीं है। फिर तंगी आने की दिल में एक और वजह भी थी, और वो क्या कि इतनी कोशिशें हैं लेकिन कोई खातर ख्वाह नतज सामने नहीं आ रहे, जो एफर्ट्स थी उसका फ्रूट और रिजल्ट नहीं दिख रहा। तो अल्लाह कह रहे हैं डोंट वरी, इस्लाम एफर्ट ओरिएंटेड रिलीजन है, रिजल्ट्स ओरिएंटेड नहीं। मसलन आप दीन का काम करते हैं, एफर्ट कैसी की, ये मकसद है, उसके बाद कितने लोगों ने आपसे फायदा लिया इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कोशिशों से बहुत थोड़े लोग इस्लाम पे आए। हजरत मूसा को टीम भी नहीं मिली तो क्या हजरत मूसा नाकाम है? हजरत इब्राहिम सारी जिंदगी इधर से उधर फिरते रहे तो क्या नाकाम है? नहीं। यानी लोगों को आपकी कोशिशों से कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं आप कोताही ना करें, बस अपने काम से काम करते जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। आई क्यू लितुन जीरा, ये है इंतजार छुपा हुआ इस सूरत का। इस किताब के आने का मकसद इसको चूमना, चाटना, इसके तावीज बनाना, इसको लिख के आयतों में डालना नहीं, लितुन जीरा भी ही। इस किताब के जरिए वॉर्न कीजिए लोगों को। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे दुनियादारी के नाते से आप कोई किसी को बर्तन दे के इसके जरिए खाना पकाओ, ये मकसद है ना। इस किताब का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है कि इसके जरिए दूसरों को आगाह किया जाए, वॉर्न किया जाए, सोई भी कौम को जगाया जाए। वज़िक्रा लिल मुमिनीन, और नसीहत और याद दहानी तो ईमान वालों के लिए। आपने लिए तुम जरा भी के अल्फाज सूरत अलनाम की आयत 19 में भी पढ़े थे, वहां क्या लफ्ज थे? अभी नहीं याद होंगे आपको, क्योंकि अभी आपका माइंड इतनी जल्दी बैक ट्रैक नहीं करेगा, लेकिन मैं बोलूंगी तो याद आ जाएंगे। वूहिया इलैया हाज़ल कुरआन, और वही किया गया मेरी तरफ ये कुरआन। क्यों? लियुनज़िरकुम बिही वमन बलग, ताकि मैं तुमको इसके जरिए से वॉर्न करूं और उसको भी जिस तक ये किताब पहुंच जाए। तो गोया के आज मैंने और आपने भी इस कुरान को क्यों लेना है, ताकि हम इसके जरिए सबसे पहले खुद को आगाह करें। देखिए आप यहाँ 2 घंटे भी बैठ के जाएं, आपको अपने इंतजार की और अपने कामों पे कोई गाइडलाइन ना मिले तो इसका फायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला चाहते क्या है कि ये हो। अब दूसरी बात है कि यहाँ लितुनज़िरा भी और जिक्रा भी है, दोनों का फर्क क्या है? देखिए लितुनज़िरा क्या है? उस्ताद का बोलना, ये करो ये ना करो, डूज एंड डोंट। और जिक्रा क्या है? स्टूडेंट्स का इनपुट। सलीमुल फितरत लोग जो होते हैं ना, कुरान पढ़ने वाले, जिनकी फितरत बिल्कुल नेचुरल होती है, ऑर्गेनिक, कोई उन पे वक्त और हालात के असर नहीं डले होते, वो जो ही इस किताब के जरिए इंतजार पाते हैं उनके अंदर जिक्र आ जाती है। यानी आप कह लीजिए कि कुरान सलीमुल फितरत लोगों के अंदर जो पोटेंशियल है ना उसको बेदार करता है, ईमान जो खोल के रख देता है, एक्टिवेट करता है। कभी कभी आपने देखा है कंप्यूटर थोड़ी देर बंद रहे तो वो स्लीप पे चले जाते हैं, सेटिंग्स भी होती हैं, लोगों ने खुद भी की होती हैं, कर भी देते हैं, लेकिन जू ही आके आप एकदम माउस को टच करेंगे ना तो एकदम स्क्रीन फिर कलर्ड हो जाती है। यही कुरान करता है। हर एक के अंदर खैर है, लेकिन कुरान की ये महफिलें जहां हम एक दूसरे को अक्सर बुलाते हैं, ये असल में हमारे अंदर के पोटेंशियल को बेदार करने वाली है। अगर अबू बकर सिद्दीक इस कुरान के पास ना आते तो कभी सिद्दीक ना बनते, और अगर उमर को ये किताब नसीब ना होती तो पता भी ना चलता कि वो फारूक थे, और अगर अली इस किताब से ना जुड़ते तो कभी हैदरे करार ना करार पाते, और उस्मान कभी भी जुन्नौरैन ना बनते। ये किताब बंदे के छुपे हुए पोटेंशियल खोल देती है, और आप वो नजरें नहीं रखते जो उस्ताद की नजरें होती हैं। आप में से भी बहुत सारों को नहीं पता कि कल आपसे अल्लाह ने क्या लेना है और देना है, लेकिन मेरी आंखें कुछ मुशाहदे और कुछ तजुर्बों से देखती हूँ कि आपके अंदर क्या कुछ होने वाला है। बाज दफा तो इंसान अपने तजुर्बात से देखता है, बाज दफा माजी के तजुर्बात को देखता है, लेकिन हकीकत है ये किताब अगर आज हमारी जिंदगी से हटे। देखिए आज हम वीकेंड गुजार के आए हैं ना, मंडे का दिन बड़ा क्रूशियल होता है, मुझे पसंद नहीं है मंडे का दिन, इसलिए आज के स्टूडेंट्स बड़े सोए होते हैं, लेकिन अगर 3 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे आप मुसलसल इस किताब से जुड़े रहें तो मंडे और संडे और ट्यूजडे का कोई फर्क आपकी जिंदगी में नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से ये किताब आपकी सारी सुस्तियां दूर कर देती है। उठ जाते हैं सुबह फजर से बाद सोते नहीं है ना, वीकेंड पे जरा मुश्किल होता है, उसमें और भी काम बहुत होते हैं, सारा दिन काम ही नहीं खत्म होता, निरी सुस्ती निरी बीमारी। घर से बंदा निकलता है अल्लाह के दीन के लिए निकलता है, ये चीज इंसान को तरक्की देती है। तो दुआ कीजिए कि ये किताब हमें कुंदन बना दे, पेश कर दे एक दफा इसके आगे अपने आप को, आप देखिएगा कि आप कुंदन बन जाएंगे। करो क्या, ये तो अल्लाह का काम था उसने कर दिया, तुम क्या करो। आयत 3 आयत नंबर 3, इत्तबियू मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, पैरवी करो इसकी जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से। वो अल्लाह का काम था कि उसने उन्ज़िला का काम कर दिया, तुम क्या करो, इत्तबियू करो। जरा यहाँ नोट तो कीजिए, फिर आपको भी नहीं सोने दूंगी। पिछली आयत में नबी सल्लम से वाहिद के सीगे में खिताब था, बात वाज़े, फला यकुन फी सदरिका का, ये नहीं कहा कि फला यकुन या यकुन फी सुदूरिकुम, ठीक है, का वाहिद था, हरज मिन हु भी वाहिद था इससे, ठीक है। यहाँ क्या आगे वला तत्तबी जमा की बात है, क्या पता चला कि ये कुरान का वो अंदाज है कि नबी को खिताब करके उम्मत को भी मुराद लिया गया, कि आप लोगों के भी दिल में इस किताब से कोई घुटन नहीं होनी चाहिए, तंगियां ना महसूस किया करें, क्या फंस गए, क्या मुश्किल है, अब इतनी मुश्किलात हैं। और बाज़ वक़्त होता क्या कि जब बंदा इस किताब से जुड़ता है ना, उसको तो ठंडक और खैर मिल रही होती है और दूसरों को उस पर रहम आ रहा होता है। हाय बेचारी 4 दिन जाती है, हाय बेचारी 4 घंटे रहती है, उनको क्या पता इस बेचारी के ये 4 घंटे ही इसके अपने हैं, बाकी 20 घंटों में तो कोई उसको अगर सोने का वक्त दे दे और नमाजों का दे दे तो बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि इसको सुनने के बाद जो गोल बनाओ इत्तबे, आप इसको हाईलाइट करें, ये गोल है, इसकी पैरवी करनी है। हमने नंबरों के लिए नहीं पढ़ना, हमने कोई किसी के सामने बड़ा बनने के लिए, आलिम फाजिल बनने के लिए नहीं बनना, किसी डिग्री के लिए नहीं पढ़ना, इसलिए पढ़ना है कि हमें इस किताब पर अमल करना आ जाए। और आप देखिए माउन जिला भी काफी था, इतना भी माउन जिला उसको मान लो जो नाजिल हुआ, इलाइकुम कह दिया, चलो और बात हो गई, लेकिन मेर रब्बिकुम क्यों कहा? आप इस फर्क को समझिए, ये बारीकियां भी आप नहीं चल सकते साथ साथ, लेकिन बाद में जब आप दोबारा अगले सालों में सुनेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ये बात उस वक्त मुश्किल लगी थी। थोड़ा सा इसको आम जिंदगी की फहम से समझिए, आप अपने बच्चे से कहते हैं बेटा स्वेटर पहन लो, ठीक है, फिर दूसरा आप क्या कहते हैं, बेटा वो स्वेटर पहन लो जो अलमारी में रखा है, और एक उससे भी मुबहम बात आप क्या करते हैं, उसको और खोल के आप कहते हैं बेटा वो स्वेटर पहन लो जो नानी अम्मा ने भेजा था, क्या फर्क है? जिस जुमले में नानी अम्मा का लफ्ज आ गया, उस स्वेटर के पहनने उसको इस्तेमाल करने से मोहब्बत बढ़ गई ना। कुरान के ऊपर अमल तो करेंगे, ये तो करना ही है, लेकिन जब इसको मेर रब्बिकुम समझेंगे ना तो फिर इसको अंदर समझेंगे। अल्लाह मैं आपकी उतारी हुई किताब को पढ़ू, इसकी पैरवी करूँ, फॉलो करूँ। लोग तो ख्वाहिशों के पीछे चल रहे हैं, वो तो हवा के पीछे लगे हुए, मैं हुदन के पीछे लगूं। अब ये बात सुन के सब कहते हैं हाँ जी जरूर मानेंगे, लेकिन अमली तौर पर कितने हैं जो इत्तबे पे अमल कर पाते हैं? इस क्लासरूम में तो बड़ा आसान है, इस क्लासरूम से बाहर निकलते हैं तो सारी मुश्किलें शुरू होती हैं। कि खानदान की बिरादरी, तो अगले हिस्से में अल्लाह इसी का तस्करा कर रहे हैं कि जो रुकावटें हैं ना उसको दूर कर दो, वला तत्तबियु मिन दूनिहि औलिया, और मत पैरवी करो इसके सिवा दूसरे सरपरस्तों की। ये दूसरे कौन है? ये मिन दूनिहि कौन है? ये अल्लाह के माँ सिवा हर वो चीज है जो अल्लाह के हुक्म से रुके। ये माशरा भी है, ये खानदान है, ये बेटे, ये बेटियां, ये औलादे हैं। आज हम में से किसको नहीं पता कि अल्लाह को हमसे क्या चाहिए? सबको ही पता ना। अमली तौर पे हम किसके हाथों मजबूर होते हैं? पहले तो अपने ही नफ्स के हाथ होते हैं, फिर औलाद, फिर ससुराल, फिर मैका, है ना। देखिए ला तत्तबियु मिन दूनी औलिया को समझना ना, तो ये दो जुमले आप भी याद कर लें कि ना किसी के लिए नेकी छोड़नी है और ना किसी के लिए गुनाह करना, आपको इस सारी आयत की समझ आ जाएगी। हम मजबूरियों के नाम पे, मसलियतों के नाम पे, ख्वाहिशों के नाम पे, चाव के नाम पे, अरमानों के नाम पे, सोसाइटी के ट्रेंड के नाम पे, खानदानों के नाम पे, अपनी खुशियों के मौके पे अल्लाह को नाराज करके तत्तबियु मिन दूनिहि औलिया करने लगते हैं। देखिए पढ़ना तो यही मुश्किल है ना, कोई आयत पढ़नी मुश्किल होती है, बहुत आसान है, लेकिन अमल का ये नुक्ता मुश्किल है। अब यहाँ तो माशाल्लाह सबने कह दिया जी, लेकिन अल्लाह ने अमली रुख दिखा दिया, कलीलम मा तज़क्करून, फिर जब अमल का मौका आएगा ना तो बहुत ही फिसल जाएंगे, बहुत थोड़े से लस्सी के ऊपर मक्खन की तरह तैरेंगे और दूध पे आई हुई मलाई की तरह तैरेंगे, बाकी सब वक्त की रविश में बह जाते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह में कलील में कर ले। एक बुजुर्ग थे तो एक मौके पे, कोई शायद लैलतुल कदर थी या कोई खास मौका था, तो एक ही दुआ कर रहे थे, अल्लाह मुझे थोड़ों में कर दे, अल्लाह मुझे थोड़ों में कर दे, अल्लाह मुझे थोड़ों में कर दे। लोगों को उनकी दुआ समझ ही नहीं आई, कहने की ये क्या दुआ है? तो इसलिए कि कलील अम्मा तज़क्करून, कलील अम्मा तश्करून, थोड़ा ही देख लीजिए। आप हमेशा देखिए ज्यादा लोग अमूमन कैसे होते हैं, आप चीजों को देखें ना चॉइस के एतबार से, आम लोगों की चॉइस बड़ी आम होती है, कुछ लोगों की बड़ी यूनिक होती है। आम लोग कोई काम करते हैं तो बड़े अदना दर्जे पे करते हैं, कलीलम मा तज़क्करून थोड़े हैं और थोड़ी है जो नसीहत लेते हैं, यानी अमली तौर पे फिसल जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जो लोग फिसल जाते हैं अमली तौर पे, इत्तबियू माउन जिला नहीं कर पाते, उनके साथ होता क्या है, बड़ी दिल के ऊपर हाथ रख के सुनने लिया आते हैं वल्लाही।